أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. جی اللہ تعالیٰ فرمانے کو کہتے ہیں تو ایسی دلیل ایسی حجت تو اللہ ہی کی ہے جو دلوں تک پہنچنے والی ہے. فلو شاء اگر وہ چاہتا یعنی اللہ چاہتا لہداکم اجمعین تو تم سب کو زبردستی ہدایت پر لے آتا. تو قرآن پاک کی اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ پچھلی آیت کا ایک اور جواب یوں سمجھیں یا اس آیت کو ایک اور طرح سے مکمل فرما رہے ہیں کہ جی جو انہوں نے دلیل دی کافروں نے کہ جی اللہ چاہتا تو ہم ایمان لے آتے, اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں کہا کہ یہ اصل میں ایمان لانے کا معاملہ ہی نہیں ہے, یہ تو رسولوں کو جھٹلانا چاہتے ہیں. اور پھر یہ فرما کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کی دلیل جو ہے وہ دلوں کو پہنچی, اللہ کی دلیل پہنچنے والی, اللہ کی دلیل جو ہے یہ پوری ہوئی. تو یہ جو ترجمہ آپ کے سامنے موجود ہے یہ حضرت مفتی تقی صاحب والا اور حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ والے ترجمے میں حضرت فرماتے ہیں کہ بس اللہ کی جو حجت ہے, اللہ کا الزام جو ہے وہ پورا ہوا. تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ اصل ان کے دل میں تکبر, اور اس تکبر کی وجہ سے وہ رسولوں کو جھٹلانا چاہتے تھے, اس وجہ سے وہ ایمان نہیں لائے, اللہ پر الزام دے رہے ہیں کہ اللہ کی وجہ سے ہم نہیں لائے, نعوذ باللہ. مگر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فلو شاء اگر اللہ چاہتے لہداکم اجمعین, اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے ساروں کو ایمان جو ہے وہ دے, اللہ کی طاقت میں یہ چیز بھی شامل ہے, اللہ تعالیٰ سب کو ایمان دے دے. مگر سب کو ایمان دینا جو ہے یہ اللہ کا مقصد نہیں, اللہ تعالیٰ دلوں کو دیکھنا چاہ رہے ہیں. تو ایمان کے لیے ترتیب اللہ تعالیٰ نے یہ بنائی ہے کہ جن کے دل صاف ہوں گے ان کو ایمان ملے گا. اور دل کے اندر کیا ہے یہ ہمیں نہیں پتا, یہ اللہ ہی کو پتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرما رہے ہیں یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور, جس کا ترجمہ یہ ہے کہ وہ تمہاری آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے اور تمہارے دلوں کے اندر چھپی ہوئی چیزوں کو بھی جانتا ہے. تو آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے اور جو دل کے اندر ہے اس کو بھی جانتا ہے. تو دل کے اندر جب وہ حالات بہتر ہو جاتے ہیں اس وقت اللہ تعالیٰ ہدایت جو ہے وہ کھول دیتے ہیں, یہ اللہ کی ترتیب ہے. تو یہ اللہ کے لیے ممکن ہے کہ سب کو ہی بس بنا دیتے, مگر اللہ نے اس دنیا میں جو جنت کا جہنم کا معاملہ رکھا ہے اس کو انسان کے دل کے ساتھ مربوط کر لیا ہے کہ جیسا دل ہوگا ویسا آخرت میں معاملہ ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے دلوں کو دیکھ کر فیصلہ فرمانا ہے. اسی لیے قرآن پاک نے فرمایا یوم لا ينفع مال ولا بنون, اس قیامت کے دن نہ مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گا. اِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ, मगर जो सवरा हुआ दिल लेकर आया वो दिल काम आएगा। तो असल मामला ये है कि अल्लाह ताला दिलों पे निगाह किए हुए हैं, और जब दिल किसी एक थ्रेशोल्ड जो अल्लाह ताला ने सेट किया हुआ है उससे बेहतरी की तरफ आ जाता है, अल्लाह ताला ईमान से नवाज देते हैं। तो ये जो दलील काफिरों ने दी कि जी अल्लाह नहीं चाह रहे, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं इनकी दलील कमजोर, फलिल्लाहिल हुज्जतुल बालिगा, और अल्लाह की दलील जो है वो पूरी हुई। अब ये पक्की बात है कि अल्लाह ताला दिलों को देखकर फैसला फरमाते हैं, इसलिए एक हदीस में आता है नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया इन्ना फी जस्दी आदम लमुज़्गा, कि बनी आदम के दिल में, बनी आदम के जिस्म में एक लोथ है, इज़ा सलुहल जस्द, जब वो लोथड़ा सवर जाता है पूरा जिस्म सवर जाता है, इज़ा फसदत फसदल जसद कुल्लुहु, और जब वो लोथड़ा बिगड़ता है पूरा जिस्म बिगड़ जाता है, अला वहु कल्ब, जान लो कि वो इंसान का दिल है। मामला ऐसा ही है कि दिल सवरता है जिस्म के सारे आजाद करने लगते हैं, और जैसे दिल बिगड़ता है पूरा जिस्म जो है वो गुनाह। तो ईमान के लिए, अपनी जन्नत के लिए, कयामत की कामयाबी के लिए अल्लाह ताला दिलों को देख रहे हैं। तो ये मुकाबला दिलों का है कि कौन बेहतर दिल बना के लाता है। इसलिए इस के अंदर अल्लाह की बड़ी स्पेशल इंटरेस्ट है, इसलिए बार बार कुरान में इस दिल का तذکرہ फरमाया। एक जगह फरमाया फी कुलूबिहिम ज़ैगुन, उनके दिलों में फरमाया। एक जगह फरमाया बल राना अला कुलूबिहिम, एक जगह फरमाया सुम्मा कसत कुलूबुहुम, उनके दिल सब बार बार जो अंदर दिल का तस्करा है, जो है समर जाए किसी तरह से, इस दिल में आ जाए और दुनिया निकल जाए। तो हिदायत का मामला ये दिल के साथ अल्लाह ने जोड़ दिया है कि दिल अगर बीमार होगा तो हिदायत भी मुमकिन नहीं, नेक आमाल भी मुमकिन नहीं, और दिल जो है वो संवर गया तो हिदायत भी मुमकिन और ईमान भी मुमकिन है। दिल बिगड़ता कैसे है, इसकी 5 निशानियां आज की इस क्लास में आपको बतानी है, ताकि हम ख्याल करें कि कहीं हमारा दिल बिगड़ता तो नहीं जा रहा। दिल बिगड़ने की पहली दलील, पहली निशानी कि इबादत बोझ महसूस होने लगती है। नमाज पढ़ना बोझ लगता है, तहज्जुद में उठना बोझ लगता है, तिलावत करना बोझ लगता है, तस्बीहात मुराकबा करना बोझ लगता है, इबादत बस दिल को भाती नहीं, सुबह उठना फजर में बहुत मुश्किल महसूस होता है। तो इबादत अगर बोझ लगने लगे तो ये सिम्टम निशानी है कि दिल बिगड़ता जा रहा है। इसी तरह दिल के बिगड़ने की एक निशानी ये है कि इंसान गुनाह करता है और गुनाह छोड़ ही नहीं पाता, समझता भी है कि जी मुझे ये नहीं करना चाहिए, ये गलत है, ये मुझे अल्लाह ने मना किया है, मगर इसके बावजूद भी वो गुनाह फिर कर बैठता है। तो जब गुनाह छोड़ना मुश्किल हो जाता है, कोशिश के बावजूद भी मुश्किल हो जाता है, ये निशानी है कि दिल बीमार है। तो दिल बीमार होने की एक निशानी इबादत बोझ महसूस होती है, और दूसरी निशानी कि गुनाह छोड़ना बड़ा मुश्किल लगता है। दिल बीमार होने की एक निशानी यह है कि गफलत वाले काम बड़े अच्छे लगते हैं, घंटों इंटरनेट पे बैठे रहना बड़ा अच्छा लगता है, घंटों गेम्स खेलते रहना बड़ा अच्छा लगता है, घंटों फेसबुक को स्क्रॉल करते रहना बड़ा अच्छा लगता है, घंटों क्रिकेट मैच देखते रहना बड़ा अच्छा लगता है। तो ये जो गफलत वाले काम अच्छे लगते हैं, ये भी निशानी है कि दिल बिगड़ रहा है। तो दिल बिगड़ने की 5 निशानियां, पहली निशानी इबादत बोझ महसूस होती है, दूसरी निशानी गुनाह छोड़ना बड़ा मुश्किल लगता है, और तीसरी निशानी गफलत वाले काम बड़े मजे के लगते हैं, और चौथी निशानी इंसान के इस दिमाग पर हर वक्त ख्वाहिशात का हुजूम रहता है। तो जब कोई एक ख्वाहिश जहन पे सारा वक्त घूम रही होती है, ये निशानी है कि दिल बीमार है। कई मरतबा वो ख्वाहिश हलाल भी होती है। एक औरत है, उसके यहाँ औलाद नहीं, वो सारा वक्त जहन यही घूम रहा है कि बस मेरी औलाद हो जाए, मेरी औलाद हो जाए, ना इबादत का सोच रही है ना किसी और चीज का सोच रही है, बस सारा वक्त जहन यही घूम रहा है। तो इसका मतलब ये है कि दिल बीमार है, शैतान ने पकड़ लिया है दिल को, इस दिल को और किसी चीज के लिए, अल्लाह को याद करने के लिए शैतान फारिग नहीं होने दे रहा। तो कई मरतबा ये ख्वाहिशात का हुजूम हो जाता है, ये ख्वाहिशात का हुजूम भी निशानी है कि दिल बीमार। तो कई मरतबा ख्वाहिश हलाल होती है, फिर भी ख्वाहिश जो है वो दिल जहन पे डेरा डाले हुए होती है, कई मरतबा हराम ख्वाहिश जहन पे डेरा डाले हुए होती है। आजकल के नौजवान कई मरतबा इंटरनेट पे उल्टी सीधी चीजें देखते हैं, सारा वक्त जहन पे यही ख्वाहिशात घूम रही होती है, तो ये भी निशानी है कि दिल बीमार है। किसी कहने वाले ने बड़ा जबरदस्त शेर कहा, किताब खोल के बैठूं तो आंख रोती है, वरक वरक तेरा चेहरा दिखाई देता है। तो अगर जहन सारा वक्त किसी न किसी ख्वाहिश में डूबा हुआ है, तो ये भी निशानी है कि दिल बीमार है। और दिल बीमार होने की एक बड़ी निशानी, इंसान को नसीहत बुरी लगती है, जो समझाने वाला होता है वो भी बुरा लगने लगता है, नसीहत भी बुरी लगती, नसीहत करने वाला भी बुरा लगता है। इसीलिए कई मरतबा लोग यही कहते हैं कि ये मौलवी साहिबान सारा वक्त बस हमें नसीहत करते रहते हैं, ये जो नसीहत अच्छी नहीं लगती, ये भी निशानी है कि दिल बीमार है। और जब दिल संवर जाता है, नसीहत अच्छी लगने लगती है, इंसान चाहता है कि मुझे कोई अच्छी बात नसीहत की बात करे। चुनाचे अमेरिका में एक मस्जिद थी, वहां पे मस्जिद में कारपेंटर एक आता था, तो मस्जिद की जो इंतजामिया थी उस कारपेंटर से काम करवाती थी, उसका नाम जॉन था। अब वो अमेरिकी था, मुसलमान नहीं था, क्रिश्चियन था, मगर उसका दिल संवरा हुआ था। दिल क्यों संवरा हुआ था? वो मस्जिद के हर बंदे से कुछ ना कुछ नसीहत लेने की कोशिश करता। अब ये भी बुरा लगता कि वो क्रिश्चियन था और मुसलमानों से नसीहत मांगना चाह रहा होता, तो वो यूं कहता कि जी, आई थिंक यू आर अ वेरी वेरी स्पिरिचुअल पर्सनैलिटी, टेल मी समथिंग अबाउट। अब देखिए वो क्या कह रहा है कि जी, आप बहुत रूहानी शख्सियत है, मुझे बताएं इसके बारे में। यानी उसका दिल नसीहत सुनने के लिए बहुत तैयार बेताब। और मस्जिद के मुसलमान माशाल्लाह नेक लोग थे, मस्जिद के मुसलमान नेक लोग,
और वो उसको खूब
खूब नसीहत करते, क्योंकि वो नसीहत सुनने के लिए तैयार था। अब वो मस्जिद में काम करता और बहुत शौक से नसीहत सुनता। इसके मुकाबले में बहुत सारे मुसलमान ऐसे होते हैं जो कहते हैं भाई हमें नसीहत ना करें। ये अजीब बात है। तो जाहिरन तो वो काफिर था, उसका दिल ज्यादा संवरा हुआ महसूस हो रहा था कि पूरा जो नसीहत करना चाहे वो तैयार था, बैठा इंतजार कर रहा है नसीहत करो। और जो जाहिरन मुसलमान थे मगर नसीहत नहीं सुनना चाह रहे थे, तो दिल जो है वो बीमार महसूस हो रहा। और क्योंकि दिल संवर गया था, एक वक्त ऐसा आया कि उसने कहा कि मैं इस्लाम कबूल करता हूं। और उस शख्स ने इस्लाम कबूल किया। जब इस्लाम कबूल किया, अल्लाह की शान, उसका नाम जॉन था, तो वहां मस्जिद में जो इंतजामिया में एक शेखुल हदीस साहब थे, लोग उनसे पूछने के लिए गए कि जी इनका नाम क्या रखा जाए। उन्होंने कहा नाम असल में क्या है, अंग्रेजी नाम इसका क्या है? उन्होंने कहा जी इनका नाम जॉन है। तो शेखुल हदीस साहब ने कहा कि बस इनका नाम जो है मोहम्मद जान आलम रख दिया जाए, तो उसका नाम जान आलम पड़ गया। तो ये पक्की बात है कि जिसको नसीहत अच्छी लगती है, नसीहत सुनने के लिए उसका दिल तैयार, इसका मतलब है कि दिल संवरा हुआ है। और नसीहत करने वाला और नसीहत बुरी लगती है, तो ये निशानी है कि दिल बिगड़ा हुआ है। हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के पास एक नौजवान आया, आके कहता है कि हजरत ऐसा लगता है हमारे दिल सो गए हैं। हजरत ने पूछा भाई क्यों सो गए? उसने कहा हजरत आप हमें नसीहत करते हैं और नसीहत का हमारे ऊपर कोई असर नहीं होता। हजरत ने फरमाया कि अच्छा, कुरान और हदीस की बात तेरे दिल पे असर नहीं करती, ये ना कह के दिल सो गए हैं, ये कह के दिल मो गए हैं, दिल मर गए हैं। ये पांच बड़ी निशानियां, ये हमारे लिए लिटमस टेस्ट है कि दिल कहां पहुंचा हुआ है। और जब ये निशानियां जो हैं, ये बुराइयां दिल के बिगड़ने की वजूहात काफिर में भी कम हो जाती हैं, तो उस पे इस्लाम वाज़ेह हो जाता है। अब अगर दिल बिगड़ा हुआ है तो उसको संवारने का क्या तरीका? दिल संवारने के बहुत सारे तरीके, मगर एक बड़ा तरीका आपके सामने रखा जा रहा है। पिछली किसी क्लास में भी बताया गया, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जिक्रुल्लाही शिफाउल कुलूब, ये जो अल्लाह का जिक्र है ये दिलों की शिफा है। तो जो कसरत से अल्लाह का जिक्र करता है, उसका दिल खुद ब खुद नेकी की तरफ मायल हो जाता है, गुनाह से दिल ठंडा हो जाता है, गुनाह का शौक ही खत्म हो जाता है। ये अजीब चीज है। इसलिए कुछ लोगों ने कहा कि ये मैजिकल चीज है अल्लाह का जिक्र, कि इंसान सोच नहीं सकता कि दिल कैसे बदलता है। वही शख्स होता है बड़े से बड़ा गुनाह करने के लिए तैयार बैठा है, मगर थोड़ा सा दिल को और जिंदगी को जिक्र की तरफ ले आया, मस्जिद आना जाना शुरू कर दिया, नमाजें पढ़ना शुरू कर दी, तिलावत शुरू कर दी, अब वही शख्स होता है। किसी ने भी फोर्स नहीं किया, खुद ही कहता है नहीं मैंने ये गुनाह नहीं करना। क्या हुआ? अल्लाह के जिक्र ने, अल्लाह की याद ने दिल को सवार दिया। और अल्लाह का जिक्र कोई एक तरह से नहीं है। जो लंबी नफलें पढ़ता है वो भी अल्लाह का जिक्र कर रहा है, जो दुआ ज्यादा करता है वो भी अल्लाह का जिक्र कर रहा है, जो तिलावत करता है वो भी अल्लाह का जिक्र कर रहा है, जो मुराकबा करता है वो भी अल्लाह का जिक्र कर रहा है, जो तस्बीहात करता है वो भी अल्लाह का जिक्र कर रहा है। हत्ता के ख्वाजा मोहम्मद मासूम रहमतुल्लाह अलैह, इस उम्मत के बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं, वो फरमाते थे कि कोई भी दीनी काम इंसान करता है वो भी अल्लाह के जिक्र में शामिल है। चुनांचे एक आखिरी वाकया सुना के आज की इस क्लास को मुकम्मल करेंगे। किताबों में एक वाकया, एक बादशाह का, बादशाह की बेटी का लिखा है कि बादशाह की बेटी को मोहब्बत हो गई महल में काम करने वाले एक फकीर नौजवान से। अब बादशाह की बेटी को उससे मोहब्बत हो गई, उस फकीर नौजवान जो महल में काम करता था उसको भी बादशाह की बेटी से मोहब्बत हो गई। अब आपस में मिलना चाहते थे, मुलाकात करना चाहते थे, मगर मुलाकात की कोई सूरत ही नहीं। और ये व्हाट्सएप का दौर नहीं था कि मैसेज करके कह दिया जाए कि जी फला वक्त या फला जगह मिल सकते हैं, पुराने दौर की बात है। बड़े महीनों बाद, बड़ी जिद्दोजहद के बाद एक ऐसा वक्त निकल आया जहां बादशाह की बेटी की मुलाकात इस फकीर नौजवान जो महल में काम करता था उससे हो गई। दोनों ने एक दूसरे से अपनी मोहब्बत का इजहार भी किया। इसके बाद ये फकीर नौजवान देखता है कि ये बादशाह की बेटी शहजादी जो है, इसकी आंखों में आंसू हैं। तो पूछता है कि क्यों रो रही है? उसने कहा इसलिए रो रही हूं कि आज जो हमारी पहली मुलाकात है, ये हमारी आखिरी मुलाकात। उसने कहा भाई क्यों आखिरी मुलाकात? उसने कहा इसलिए कि मैं तो बादशाह की बेटी हूं और तू महल में काम करने वाला फकीर नौजवान, तेरी मेरी कहां मुलाकात हो सकती है? ये सुन के वो नौजवान भी बड़ा गमजदा हुआ। तो शहजादी कहती है बादशाह की बेटी कि देखो एक सूरत है कि तू और मैं बार बार मिल सकते हैं। उसने कहा वो क्या? उसने कहा वो ये है कि मेरा जो वालिद है ना बादशाह, ये अल्लाह वालों को बड़ा पसंद करता है। अगर तू किसी तरह से अल्लाह वाला बन जाए ना, तो फिर मैं अपने वालिद से कहकर बार बार कि जी मैं इन अल्लाह वालों से दुआ करवाने जा रही हूँ, ये कह के मैं तेरे से मुलाकात करने आ सकती हूँ, वो मुझे इजाजत जब दे देंगे। उसने कहा अच्छा, ये अल्लाह वाले कैसे बनते हैं? शहजादी कहती है वैसे मुझे इतना नहीं पता अल्लाह वाले बनते कैसे, मगर ये अल्लाह वाले सारा वक्त अल्लाह अल्लाह करते रहते हैं। तो अगर तू महल से थोड़ा दूर जाके किसी कुटिया में बैठ के सुबह से शाम तक अल्लाह हू करता रहे, तो लोग यही तसव्वुर करेंगे तू अल्लाह वाला है। इतना दीवाना था कि महल छोड़कर चले गया और दूर एक जगह कुटिया ली, उसमें बैठ के सुबह से शाम तक अल्लाह 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 अल्लाह। अब नीयत अल्लाह को राजी करने के लिए नहीं थी अल्लाह अल्लाह करने, मगर जिक्र शुरू कर दिया। करीब के गांव वालों में मशहूर हो गया, जी कोई बड़े बुजुर्ग आए हैं सुबह से शाम तक सिर्फ अल्लाह को याद करते हैं और कोई काम नहीं, नमाजें पढ़ते हैं अल्लाह को याद करते हैं। मशहूरी हो गई, लोगों ने दुआएं करवाना शुरू कर दी, जी आप अल्लाह वाले हैं दुआ करें। हत्ता के मशहूर होते होते बादशाह के किसी वजीर को पता चला, वजीर ने बादशाह को बता दिया कि बादशाह सलामत हमारे मुल्क में ऐसे अल्लाह वाले हैं जिनका कोई और काम नहीं सिवाय अल्लाह को याद कर, सुबह से शाम तक अल्लाह को याद कर। अब बादशाह अल्लाह वालों से मोहब्बत रखता, बादशाह ने कहा अच्छा ऐसे अल्लाह वाले हैं, ऐसे अल्लाह वालों से तो मैं खुद मुलाकात करूंगा। बादशाह खुद चल के उसकी कुटिया में पहुंचा और हैरान हो गया कि बादशाह कुटिया में दाखिल हुआ, ये फिर भी अल्लाह की याद में लगा हुआ है, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। बादशाह वाकई बड़ा खुश हुआ कि देखो ये वाकई बेलौस अल्लाह वाले हैं, कि मैं बादशाह तो जहां जाता हूँ लोग खड़े हो जाते हैं, बड़ा प्रोटोकॉल होता है, मैं इसकी कुटिया में आया, मेरी कुटिया में आने ने भी इसको अल्लाह की याद से गाफिल नहीं किया, ये कितना अल्लाह वाला है। तो बादशाह बड़ी अदब से उसके सामने बैठा और बहुत देर बड़ी मोहब्बत से बादशाह ने उसको देखा, बड़ी उससे दुआएं करवाई और बड़े अदब से रुख्सत मांग के बादशाह वापस अपने महल आया। रात को जब खाना लगा और पूरा खानदान बैठा हुआ था, तो बादशाह ने कहा आज मैं बड़ा खुश हूं कि हमारे मुल्क में ऐसे अल्लाह वाले हैं कि जिनको अल्लाह की याद के अलावा और कोई काम नहीं। बेटी ने यह बात सुनी तो बेटी ने फौरन सोचा कि मेरा काम हो गया। बेटी ने कहा कि अब्बा हुजूर, इन अल्लाह वालों से तो मुझे भी दुआ करवानी है, तो क्या मैं उनसे दुआ करवाने चले जाऊं? बादशाह ने कहा बेटा जरूर जाओ, दुआ करवाओ और मेरे लिए भी दुआ करवाना। अगले दिन ये बेटी बन ठन के तैयार हो के पहुंची उसकी कुटिया में। जैसे ही दाखिल हुई तो ये मुसल्ले पे बैठ के अल्लाह 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 अल्लाह। वो कहती है भैया बस कर दे, जिस मकसद के लिए तू अल्लाह अल्लाह कर रहा था वो हासिल हो गया, मैं आ गई हूँ तेरी कुटिया में। अल्लाह की शान वो फिर भी लगा हुआ है, अल्लाह 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 अल्लाह। शहजादी समझे कि शायद वो भूल गया है, मैं उसको याद दिलवाती हूँ, काफी महीने हो गए हैं। उसने कहा अल्लाह के बंदे मैं ही थी जिसने तुझे आइडिया दिया था कि तू यूं करेगा तो तेरी मेरी मुलाकात होगी, तो अब रुक जा, वो फिर भी नहीं रुका। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, ये बड़ी हैरान हुई, थोड़ी देर इंतजार किया, फिर आखिर को शहजादी थी तो गुस्से में बोली कि क्या तुझे मुझसे मुलाकात नहीं करनी। उस वक्त उसने जवाब दिया कि जिस अल्लाह को याद कर रहा हूं, नाफरमानी करने को दिल ही नहीं होता, चली जा, मैंने तेरी तरफ देखना भी नहीं है। तो दिल को संवारने का बेहतरीन जरिया इंसान कसरत से अल्लाह का जिक्र करे। तो अल्लाह ताला दिलों को देखते हैं, उसकी कुदरत में 100% है, वो हर एक को हिदायत दे दे, मगर उसने हिदायत के लिए दिलों को देखना है, ये उसने अपनी तरतीब बनाई है। और दिल के अंदर क्या है ये अल्लाह ही जानता है। यअलमु खाइनतल आयुन, वो आंखों की खयानत को भी जानता है। वमा तुख्फिस सुदूर, और जो दिलों के अंदर है वो भी जानता है। चोरियां आंखों की और सीनों के राज, चोरियां आंखों की और सीनों के राज, जानता है सबको तू ए बेनियाज। तो वो बेनियाज बादशाह सबके अंदर के मामलात को जानता है। अल्लाह ताला हमें भी अपने दिलों को संवारने की तौफीक अता फरमाए। यहां आके आज की क्लास मुकम्मल होती है। ये आजिज एक मर्तबा फिर तर्जुमा कर देता है। आऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल, ए महबूब आप कह दीजिए, फलिल्लाहिल हुज्जतुल बालिगा, और अल्लाह की दलील है जो दिलों तक पहुंचने वाली है। फलौ शाअ, चुनाचे अगर वो चाहता, लहदाकुम अजमाईन, तो तुम सबको हिदायत पर ले आता। यहां आके आज की क्लास मुकम्मल होती है। तालिबा थोड़ी देर के लिए अपने दिलों में अल्लाह को याद कर ले, आंखों को बंद कर ले, सर को झुका ले, दुनिया और जो कुछ दुनिया में है उससे हट कट के अल्लाह की याद में डूब जाए। थोड़ी देर के लिए अपने दिलों में अल्लाह को याद कर ले, आंखों को बंद कर ले, सर को झुका ले।
हवा वो हिर्स वाला दिल बदल दे, हवा वो हिर्स वाला दिल बदल दे।